पृष्ठ संख्या 677 कोह काफ। कवि समय के अनुसार काफ पर्वत पर परियां रहती हैं और यह पर्वत पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है। अतएव काफ ता काफ, काफ से लेकर काफ तक का अर्थ समस्त विश्व लेते हैं। उदाहरण क, बादशाहे बूद आलम ज आने उ हफत किश्वर जुमला दर फरमाने उ बूद दर फरमा दिही इस्कंदरे काफ ता काफ जहानश लश्करे। एक, अर्थात एक बादशाह था जो समस्त संसार का स्वामी था और 7 द्वीपों पर राज्य करता था। सिकंदर जैसा बादशाह भी उसकी आज्ञा का पालन करता था तथा उसकी सेना काफ ता काफ अर्थात संसार भर में फैली हुई थी। ख, कुशादी नफा ए तब ए मरा नाफ मुअत्तर कुंज ए मुश्कम काफ ता काफ। दो, अर्थात ए खुदा, तूने मेरी कल्पना शक्ति के नाफे मृग नाभि को खोल दिया। अब काफ ता काफ समस्त संसार को मेरी कस्तूरी के द्वारा सुगंधित कर दे। कवि चाहता है कि दुनिया भर में उसका काव्य फैल जाए और लोग उसकी कद्र जाने। काफ पर्वत के संबंध में यह भी प्रसिद्धि है कि वह जुमुरर्द पन्ना के रत्नों से बना हुआ है। 3 1 ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार मंतिक उत्तैर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 284। 2 मौलाना जामी यूसुफ जुलेखा नवल किशोर प्रेस लखनऊ सन 1896 ईस्वी पृष्ठ 5। 3 सैयद आबिद अली आबिद तलमिहाते इकबाल हिस्सा ए फारसी लाहौर सन 1959 ईस्वी पृष्ठ 547। पृष्ठ संख्या 678। भारतीय साहित्य में कोई काफ ऐसे सुमेरु पर्वत का उल्लेख किया जाता है। प्रसिद्धि है कि वह सोने का बना हुआ है। कवि जायसी लिखते हैं, जो सुमेरु तिरसूल बिनासा भा कंचन गिरी लाग अकासा। 1 कोह कने। 2 फरहाद, पहाड़ काटने वाला फरहाद जो ईरान के बादशाह खुसरो परवेज 3 की मलिका 4 शीरी का सच्चा प्रेमी था। पीछा छुड़ाने के लिए खुसरो परवेज ने फरहाद से कहा कि बेसुतून पर्वत से शीरी के प्रासाद तक जुए शीर दूध की नहर ले आओ तो तुम्हें शीरी मिल जाएगी। वह अपना तेशा 5 उठाकर कटिबद्ध हो गया और पहाड़ काटने लगा। अंततः उसने इस कार्य को पूरा कर दिया। जब शीरी के पति ने देखा कि कार्य संपन्न हो गया तो उसने खबर उड़ा दी कि शीरी मर गई। यह सुनते ही फरहाद ने वही तेशा जिससे पहाड़ काटा करता था अपने सिर में मार लिया और वहीं ढेर हो गया। शीरी को जब पता चला तो उसने भी आत्महत्या कर ली। मौलाना अबू ताहिर कातिब लिखते हैं, नब तेशा बेसुतूरा जदा कोहकन जे हरसू किजे दर्द कोहकन शुद्ध दिले खारा पारा पारा। 6 1 जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 8। 2 पहाड़ काटने वाला, कोहकन का अर्थ सच्चा प्रेमी लिया जाता है। 3 खुसरो परवेज न्यायशील नौशीरवान का पौत्र था। उस सासानी वंश का अंतिम प्रसिद्ध बादशाह था। उसका शासनकाल सन 590 ईस्वी से सन 628 ईस्वी तक था। सर साइक्स पी ए हिस्ट्री ऑफ पर्शिया भाग 1 लंदन सन 1951 ईस्वी पृष्ठ 478-86। 4 रागी। 5 खनित्र। 6 सफीना ए अदब संपादक फजले हक लाहौर सन 1941 ईस्वी पृष्ठ 258। पृष्ठ संख्या 679। अर्थात वह तेशे के साथ तो नहीं था कि पहाड़ को काटने वाले फरहाद ने बेस्तून पर्वत को हर तरफ से काट डाला, बल्कि यह तो पहाड़ को काटने वाले के दुख के कारण से था या उसके साथ सहानुभूति के कारण से था कि सख्त पत्थर का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। गावे जमीन। 1 वह गाव बैल है जिसके संबंध में प्रसिद्ध है कि उसके सींग पर पृथ्वी टिकी हुई है और वह एक मछली की पीठ पर खड़ा है, मछली हवा में स्थित है। 2 फारसी सूफी कवियों ने इसी प्रसिद्धि को अपनाया है। कवि अत्तार कृत मंतिक उत्तैर में से एक उदाहरण देखिए, चू जमी बर पुष्ट गाव इस्तादास्त गाव बर माही ओ माही बर हवास्त। 3 अर्थात भूमि बैल की पीठ पर टिकी हुई है, यह बैल एक मछली पर खड़ा है और मछली वायु में स्थित है। गुल व बुलबुल, फारसी काव्य में फूलों में गुल को विशेष मान प्राप्त है। गुल को भारत में गुलाब कहा जाता है, इसी पर बुलबुल चार आसक्त होती है। एक, भूमि का बैल, वह बैल जिसके सींग पर पृथ्वी स्थित है। दो, भारतीय दृष्टिकोण से पाताल में शेष भगवान के फनों पर पृथ्वी टिकी हुई है, शेष जी एक कूर्म की पीठ पर स्थित है। तीन, मंतिक उत्तर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ चार। चार क, हिंदुस्तान में ईरान की बुलबुल नहीं मिलती, यहाँ की बुलबुलें गाती नहीं। इस संबंध में श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह लिखते हैं, हिंदुस्तान में जिस जाति की बुलबुलें उपलब्ध हैं वे खूब थिरकती हैं, चहकती हैं, पर गाती नहीं। फिर भी फारस के शायरों की नकल में हम बुलबुलों के गानों तरानों का जिक्र करते हैं। यदि फारस के शायरों ने बुलबुलों के गाने की बात कही है तो उन्होंने कोई गलती नहीं की, बात सही है। वहाँ जिस जाति की बुलबुलें पाई जाती हैं वे गाने वाली हैं, तथा बहार में गुलों के आने पर मस्ती के आलम में उसी जोशो खरोश के साथ गाती हैं जिसके साथ भारतवर्ष की कोयल अथवा पपीहा गाया करता है। श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह, भारत के पक्षी, दिल्ली, सन 1958, पृष्ठ 62। ख, सैयद आबिद अली आबिद लिखते हैं, हिंदुस्तान में ईरानी बुलबुल का सिरे से वजूद ही नहीं। ईरान की बुलबुल बहुत खुश रंग होती है, उसके चमकते हुए रंग रंग के पर उन शेरों में बहार देते हैं जिनमें बुलबुल और गुलाब के इश्क का जिक्र किया गया है। सैयद आबिद अली आबिद, तलमिहाते इकबाल, हिस्सा ए फारसी, लाहौर, सन 1959 ईस्वी, पृष्ठ 376। जब पृष्ठ संख्या 680, ईरान में बहार में गुल का साम्राज्य होता है तो बुलबुल मदमस्त हो जाती है। इस प्रसंग में मौलाना आजाद ने लिखा है, उधर गुलाब खिला इधर बुलबुले हजार दास्तान उसकी शाख पर बैठी नजर आई। बुलबुल न फकत फूल की टहनी पर बल्कि घर घर दरख्तों पर बोलती है और चहचहे करती है, और गुलाब की टहनी पर तो यह आलम होता है कि बोलती है, बोलती है, बोलती है, हद से ज़्यादा मस्त होती है, तो फूल पर मुंह रख देती है और आंखें बंद करके जमजमा करती रह जाती है। तब मालूम होता है कि शायरों ने जो इसके और बहार के और गुल-ओ-लाला के मजबून बांधे हैं वह क्या हैं और कुछ असलियत रखते हैं या नहीं। एक, फारसी काव्य में गुल बुलबुल से शब्द परंपरा भुक्त और रूढ़ी जैसे हो गए हैं। बुलबुल शुदन मुहावरा भी प्रचलित है जिसका अर्थ है प्रेमी होना। एक, मोहम्मद हुसैन आजाद, सखुंदाने वाइस, लाहौर, पृष्ठ 181। गुल और बुलबुल पर फारसी कवियों ने अपना कलम तोड़ दिया है। उदाहरण, पृष्ठ संख्या 681। क, रौनके अहदे शबाबस्त दिगर बूस्ता रा, मी रसद मुजदा ए गुल बुलबुले खुश इल्हान रा। एक, अर्थात फिर बाग का यौवन उभर रहा है, फूल के आगमन का शुभ समाचार मधुर कंठ बुलबुल को पहुंच रहा है। ख, शमा ओ गुलो परवाना ओ बुलबुला बुलबुल हमा जमा अंध, ए दोस्त बिया ब्रह्म तन्हाई ए मा कुन। दो, अर्थात शमा और परवाना तथा गुल एवं बुलबुल सब साथ साथ हैं परंतु हम एकाकी हैं। ए दोस्त प्रिय प्रियतम, आ हमारे अकेलेपन का ध्यान करके हम पर कृपा कर। गंजे तीन, कारून अथवा कारू, गंजे कारून का अभिप्राय है असीम एवं अपार धन राशि। फारसी साहित्य में कारून के खजानों, अतुल धन संपत्ति एवं उसकी कृपणता का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि कारून हजरत मूसा का चचेरा भाई था। उसको कीमिया चार का ज्ञान था जिससे वह सोने चांदी का निर्माण करके अपने कोषों को भर रहा था। धीरे धीरे उसके पास इतने कोष एकत्रित हो गए कि 40,000 ऊँटों पर उसके कोषों की चाबियां लादी जाती थीं। हजरत मूसा ने उससे कहा कि 1,000 दीनार पर एक दीनार दान के रूप में दिया कर। उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और हजरत मूसा को यातनाएं देने लगा। खुदा ने उसे उसके खजानों सहित जमीन में गाड़ दिया। ख्वाजा फरीदुद्दीन अतार कारून के विषय में लिखते हैं, चीस्त दुनिया आशियाने हिरसो आज, मांदा अस फिरौनो अस नमरूद बाज। एक, दीवाने हाफिज मदबाई मजीदी कानपुर पृष्ठ 9। दो, दीवाने हाफिज मदबाई मजीदी कानपुर पृष्ठ 347। तीन, कोश चार, रसायन विज्ञान पृष्ठ संख्या 682। गाह कारू लफ्ता और बगुजास्ता, गाह श्रद्धा दश बशिद दास्ता। एक, अर्थात यह दुनिया क्या है, लोभ तथा लिप्सा का घर है। यह बात हमें फिरौन 2 और नमरूद 3 से मालूम हुई है। कभी कारून ने कोष एकत्रित किए और छोड़कर इस दुनिया से कूच कर गया, कभी शद्दाद 4 ने विपुल संपत्ति बटोरी परंतु यही छोड़कर चलता बना। मौलाना निजामी ने कारून एवं उसके कोषों के संबंध में इस प्रकार लिखा है, अज आ गंज काबुर्द कारू बदस्त, सर अंजाम दर खाक बीचू निशास्त, चे बाइद निहादान बरी खाक दिल, कजू गंजे कारू फ्रू शुद बगिल। 5, अर्थात उसी कोष के कारण जो कारून ने प्राप्त किया था, देख कि अंत में वह किस प्रकार भूमि में धस गया। इस दुनिया से दिल नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसके हाथों कारू का कोष भूमि में धस गया। 1, मंतिक उत्तर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ 127। 2, मिस्र का अभिमानी काफिर बादशाह जो हजरत मूसा का समकालीन था। 3, इराक देश का अभिमानी एवं अत्याचारी काफिर बादशाह जो हजरत इब्राहिम के समय में शासन करता था। 4, आद कौम का काफिर बादशाह जिसने बिहिश्त की नकल पर कोहस्ताने यमन में बागे इरम बनवाया था, बाग में सोने चांदी तथा मणियों के भवन थे। 5, सिकंदर नामा, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन 1876 ईस्वी, पृष्ठ 80, पृष्ठ संख्या 683। गौशाला ए सामिरी। 1, सामिरी सामिर नगर का निवासी था और हजरत मूसा के समय में प्रसिद्ध जादूगर था। 2, वह हजरत मूसा को अपना पैगंबर नहीं समझता था अपितु उनका विरोध करता था। एक बार जब हजरत मूसा तूर पर्वत पर गए हुए थे तो सामिरी ने जादू के बल पर सोने का एक बछड़ा बनाया जो आवाज करता था। हजरत मूसा की कौम ने उसे पूजना शुरू कर दिया। मूसा के लौटने पर जब उन्हें विदित हुआ कि उनकी जाति पथभ्रष्ट हो गई है तो वह परम दुखी हुए। उन्होंने अपना यदे बैजा 3 बछड़े के समक्ष कर दिया जिससे वह जलकर राख हो गया। इस प्रकार सामिरी का खेल बिगड़ गया। शेख सादी लिखते हैं, बाजम नफस फिरो शवद अज हौले अहले फजल, बा कफे मुसवी च जनत सिहरे सामिरी। 4, अर्थात प्रतिष्ठित एवं योग्य व्यक्तियों के डर से मेरा दिल बैठ जाता है क्योंकि मूसा की हथेली यदे बैजा के सामने सामिरी क्या जादू चला सकता है। 1, सामिरी का बछड़ा। 2, उसका नाम भी मूसा था। बहुमान्य मत यही है कि वह सामिर नामक नगर फलस्तीन का पुराना शहर का रहने वाला था, परंतु सैयद आबिद अली आबिद ने तलमीहाते इकबाल में लिखा है कि सामिरी उसके कबीले का नाम था, वह सामिर नगर का निवासी नहीं था। तलमीहाते इकबाल, हिस्सा ए उर्दू, लाहौर, सन 1959 ईस्वी, पृष्ठ 39। 3, सफेद हाथ। प्रसिद्धि है कि हजरत मूसा अपना दाया हाथ बगल में ले जाकर जब निकालते थे तो वह सूर्य की भांति चमकने लगता था जिससे आंखें धुंधला जाती थीं। 4, शेख सादी मवाइजे सादी, तेहरान, सन 1320 हिजरी, पृष्ठ 77, पृष्ठ संख्या 684। मारे जहाक। 1, जहाक 2 ईरान का एक क्रूर बादशाह था। वह जमशेद बादशाह को मारकर बादशाह बना था। जहाक का अर्थ है हंसने वाला। चूंकि जन्म के समय उसके 2 दांत वर्तमान थे इसलिए जहाक नाम पाया। प्रसिद्धि है कि शैतान के बोसा देने चुंबन करने से उसके कंधों पर 2 सांप उत्पन्न हो गए थे जिनको खाने के लिए 2 मनुष्यों का भेजा प्रतिदिन दिया जाता था। 3, यदि किसी दिन उन्हें यह आहार न मिलता तो वे जहाक की मज्जा चाटने लगते थे। यदि उन सांपों को काट दिया जाता तो फिर उत्पन्न हो जाते थे। सांपों की ओर संकेत करते हुए कवि उर्फी लिखते हैं, रज्म गाहे तू शाना ए जहाक। 4, हे आश्रयदाता, तेरी युद्ध भूमि जहाक के कंधे की भांति है, अर्थात जिस प्रकार जहाक के कंधे पर सांप लोगों को खा जाते थे उसी प्रकार समर स्थल में तेरे सैनिक वैरियों का काम तमाम कर देते हैं। माहे नक्शब। नक्शब तुर्किस्तान का एक नगर है। यहाँ इब्ने अता नामक हाकिम 6 ने, जिसे इब्ने मुकन्ना भी कहते हैं, 7 अद्भुत रीति से कृत्रिम चांद्र बनाया था। 1, जहाक के सांप। 2, अजी दहाक, अजदहा अर्थात अजगर, जहाक। सर साइक्स पी, ए हिस्ट्री ऑफ पर्शिया, लंदन, सन 1951 ईस्वी, पृष्ठ 134। वही पृष्ठ 134। 4 कसायदे उर्फी नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 46। 5 नक्षप का चांद। 6 विचारक दार्शनिक। 7 डॉक्टर स्टेनगास एफ पर्शियन इंग्लिश डिक्शनरी लंदन सन 1930 ईस्वी पृष्ठ 1145 तथा 1393 पृष्ठ संख्या 685। जो सियाम पर्वत की तराई में नक्षप के कुएं से प्रति सायं उदित होता था और अपने प्रकाश से 12 मील के क्षेत्र को प्रकाशित करता था। 2 मास तक यह चांद निरंतर निकलता रहा। माहे नक्षप असली चांद की तुलना में मंद था। अंततः 2 मास के अनंतर वह नष्ट भ्रष्ट हो गया। माहिन खब्ज को माहे मुकन्ना, कमरूल मुकन्ना और माहे सियाम भी कहते हैं। जिस कुएं से यह चांद उदय होता था उसे चाहे नक्षप कहते हैं। कवि उर्फी आत्मश्लाघा करते हुए कहते हैं, मियाने अनवरी और उर्फी अर्जोयद कसे निस्बत हदीसे माहे नक्षप अर्जा दारो माहे ताबानश। 1 अर्थात यदि कोई अनवरी 2 और उर्फी की तुलना करना चाहे तो उसे माहे नक्षब कृत्रिम चांद और असली उज्जवल चांद का उल्लेख कर दे। मजनू अरब के आमर कबीले के एक सरदार का पुत्र जिसका वास्तविक नाम कैस था और जो लैला नामक एक ललना पर आसक्त होकर उसके लिए मजनू पागल हो गया था। प्रेमोन्मत्त हो जाने के परिणाम स्वरूप वह मजनू की संज्ञा से प्रख्यात हुआ। अब यह शब्द सच्चे प्रेमी का प्रतीक बन गया है। शैशव काल में कैस और लैला एक ही पाठशाला में पढ़ते थे। वहां उनका प्रेम अंकुरित हुआ। जब बड़े हुए तो उनके प्रेम की चर्चा घर घर होने लगी। इस पर लैला के पिता ने अपनी कन्या का घर से निकलना बंद कर दिया। प्रेमी लैला लैला की रट लगाता हुआ मारे मारे फिरने लगा और घर घाट एक करने लगा। 1 कसायदे उर्फी नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 38। 2 फारसी का उच्च कोटि का कवि जिसे कसीदा काव्य रूप का पैगंबर कहा जाता है। उसकी दुर्वस्था देखकर मजनू के पृष्ठ संख्या 686 पिता तथा अन्य संबंधियों ने लैला के पिता से कन्या का मजनू के साथ विवाह करने का प्रस्ताव किया परंतु उसने उसे अस्वीकार कर दिया। अंततः दोनों विरह व्यथा में घुल घुल कर मर गए। फारसी सूफी काव्य में मजनू साधक का और लैला प्रभु का प्रतीक माने जाते हैं। उदाहरणार्थ ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार की यह छोटी सी कथा देखिए। दीद मजनू रा अजीजे दर्द नाक कु मियाने रह गुजर भी बेख्त खाक गुफत ए मजनू चेमी जोई चुनी गुफत लैला हमी जोयम दरी गुफत लैला रा कुजा याबी जे खाक के बवद दर खाक के शारे दूर पाक गफत मन मी जोयमश हरजा की हस्त बू की जाए यक दमश आरम बदस्त। 1 अर्थात मजनू को उसके किसी नाती ने देखा कि रास्ते की धूल छान रहा था। उसने मजनू से पूछा कि इस प्रकार कौन सी वस्तु खोज रहा है। मजनू ने उत्तर दिया कि लैला को ढूंढ रहा हूँ। नाती ने कहा कि तू लैला को इस प्रकार धूल में से कैसे खोज निकालेगा, वह पवित्र मोती भला रास्ते की धूल में क्यों कर गिर सकता है। मजनू ने उत्तर दिया कि मैं लैला की खोज सर्वत्र करता हूँ, शायद इसी प्रकार किसी स्थान पर मिल जाए। मोजीजाते मूसा 2 खुदा ने कोहे तूर पर हजरत मूसा को फिरौत के जादूगरों का सामना करने के लिए 2 चमत्कार प्रदान किए। उनका वर्णन फारसी कवियों को बहुत प्रिय है। 1 मंतिकुत्तैर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 222। 2 हजरत मूसा के चमत्कार। 2 चमत्कार निम्नलिखित हैं पृष्ठ संख्या 687। 1 असाए 1 मूसा अथवा असाए कलीम। 2 जब हजरत मूसा अपना असा भूमि पर रखते थे तो वह सांप बन जाता था। वह असा पानी में खुश्की का रास्ता बना देता था। प्रसिद्धि है कि असाए मूसा वस्तुतः शजरे तूबा 3 की एक टहनी था जो फरिश्ता जिब्राइल ने हजरत मूसा को खुदा की ओर से लाकर दी थी। 2 यदे बैजा 4 अथवा दस्ते कलीम 5 या दस्ते मूसा। हजरत मूसा अपना दायां हाथ बगल में लेकर जब निकालते थे तो वह सूर्य की भांति चमकने लगता था जिससे आंखें चुंधिया जाती थीं। उदाहरण आ हमा शाब दाहा अक्ल की मी कर्द आजा सामेरी पेशे असा ओ यदे बैजा भी कर्द। 6 अर्थात वही सब जादू जो बुद्धि प्रेम के सामने चलाती थी और विफल हो जाती थी सामेरी 7 उन जादुओं को हजरत मूसा के असा और यदे बैजा के सामने करता था और असफल हो जाता था। एक लगुड़ डंडा लाठी, असाय मूसा हजरत मूसा की लाठी। दो कलीम का अर्थ है वार्तालाप करने वाला। तूर पर्वत पर खुदा से वार्तालाप करने के कारण हजरत मूसा को कलीम अथवा कलीमुल्ला कहा जाता है, यह उनका लकब है। तीन शजर वृक्ष, तूबा बिहिश्त के वृक्ष का नाम है, शजरे तूबा तूबा का वृक्ष। चार यद बराबर हाथ, बैजा बराबर सफेद, यदे बैजा बराबर सफेद हाथ। पांच दस्त बराबर हाथ, कलीम बराबर हजरत ईसा का लकब, दस्ते कलीम बराबर हजरत मूसा का हाथ। छः दीवाने हाफिज मतबाए मजीदी कानपुर पृष्ठ 163। सात एक जादूगर जो जादू के द्वारा हजरत मूसा को नीचा दिखाना चाहता था, परंतु हजरत मूसा ने अपने उक्त दो चमत्कारों के माध्यम से उसकी एक न चलने दी। भाव यह है कि पृष्ठ संख्या 688, जिस प्रकार बुद्धि प्रेम के सामने मात खा जाती है, उसी प्रकार जादूगर सामिरी को हजरत मूसा से मुंह की खानी पड़ी। प्रेमी बुद्धि को निंद्य समझते हैं क्योंकि वह प्रेम पथ में बाधक है। मुग अथवा मुग बच्चा पीरे मुगान, जरदुष्ट के मतानुयायी आग की उपासना करते हैं। उनके आतिश कदों अग्निशालाओं में आग प्रतिपल प्रज्वलित रहती है, कभी बुझने नहीं पाती। आतिश कदों की सेवा के लिए जो सुंदर तरुण नियुक्त होते हैं, वे मुग कहलाते थे और उनका अध्यक्ष पीरे मुगा कहलाता था। यही नौजवान स्वभाव में साकी मदरा पान कराने वाले का कार्य भी करता था। ख्वाजा हाफिज लिखते हैं, मन अस दिर मैं ओ मुतरीबी नदी दमे हरगिज, हवाए मुग बच्च गानम दर ई ओ आम अंदाख्तम। एक अर्थात मैं संयम को छोड़कर मदिरा और गायक को कदापि न देखता, परंतु मुगों की संगति ने मुझे इस मदिरा और उस राग की ओर आकर्षित किया। फारसी काव्य में पीरे मुगा का उल्लेख बहुत बार किया जाता है। कवि वाहिदी लिखते हैं, नुक्ता अज नफसे पीरे मुगानम याद अस्त, बादा नोशीद की बुनियादे जहाँ बर बाद अस्त। दो अर्थात मुझे अपने आग की पूजा करने वाले गुरु के वचनों से एक रहस्यपूर्ण बात याद है, वह यह कि मदिरा पान किए जाओ, क्योंकि दुनिया की नींव वायु पर रखी गई है। एक दीवाने हाफिज मतबाए मजीदी कानपुर पृष्ठ 80। दो सफीना ए अदब संपादक फजले हक लाहौर सन 1941 पृष्ठ 252 पृष्ठ संख्या 689। सूफी काव्य में पीरे मुगान सिद्ध गुरु का प्रतीक है। ख्वाजा हाफिज कहते हैं, जे दास जे आस्ताने पीरे मुगा सर चरा कशम, दौलत दरी सरा ओ कुशाइश दरी दरस्त। एक अर्थात मैं पीरे मुगा की चौखट से सिर उठाकर सिर क्यों कर उठाऊं, भाग्य शुभ मंगल इस घर में और वृद्धि इस द्वार पर है। मुगीला बबूल अथवा कोकर, मुगीला बराबर उम माता प्लस गीला दो जिन भूत प्रेत अर्थात देवों की माता। प्रसिद्धि है कि मुगीला अथवा बबूल के वृक्षों पर जिन भूत प्रेत आदि रहा करते हैं। कवि उर्फी लिखते हैं, आशियाने जगनो जाग नचीदम बरसर, सर कदम साख्ता दरखारे मुगीला रफ्तम। तीन अर्थात मैं चीलों और कौवों के घोंसले को अपने सिर पर नहीं उठाता फिरा, बल्कि बबूल के कांटों में से सिर को पांव बनाते हुए गुजर गया। जब बेचारा मजनू इश्क का मारा हुआ लैला की खोज में फिर रहा था, तो गम में घुल घुल कर शुष्क वृक्ष के कमजोर तने के समान बन गया। एक दीवाने हाफिज मतबाए मजीदी कानपुर पृष्ठ 37। दो गीला गूल अरबी शब्द का बहुवचन है। फारसी में इसे गोल कहते हैं, जिसका अर्थ है जिन या देव, जो वनों पर्वतों या बियावानों में रहता है। वह जो भी रूप चाहे धारण कर सकता है। वह पथिकों को पथभ्रष्ट कर देता है और लूट लेता है या प्राण हर लेता है। तीन कसायदे उर्फी नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 289। यहाँ पृष्ठ संख्या 690 तक कि पक्षियों ने उसके सिर पर घोंसले बना लिए, परंतु उर्फी का प्रेम मजनू के इश्क से बिल्कुल निराला है। वह प्रिय की खोज में सिर के बल फिरता रहा और नाना प्रकार के कष्टों को सहन करता रहा। वह भूतों आदि से भी नहीं डरा। मन व सलवा, नील नदी को पार करने के उपरांत बनी इस्लाइल 40 वर्ष तक तीह वन में रहे। वहाँ उनके जीवन का निर्वाह मन व सलवा से होता था। मन शहद जैसी एक मधुर वस्तु थी जो वृक्षों के पत्रों पर जम जाती थी। सलवा पक्षी थे जिन्हें हिंदी में लवा कहते हैं। अंधेरा होने पर वे उन्हें भूनकर खा लिया करते थे। फारसी कवियों के अनुसार मन व सलवा स्वर्ग के स्वादिष्ट पदार्थ थे, जिन्हें फरिश्ता प्रतिदिन हजरत मूसा एवं उनके साथियों के लिए भेजा करते थे। कवि उर्फी लिखते हैं, मनो सलवा बर लकम रेजंदो मन बर दिले सदपारा दंदा मी जनम एक, अर्थात फरिश्तों ने मन तथा सलवा को मेरे होठों से लगाया, परंतु मुझे दिल के सैकड़ों टुकड़े चबाने में मजा आता है। भाव यह है कि प्रेमी को स्वादिष्ट पदार्थ खाने के स्थान पर अपने जिगर का खून पीने में आनंद आता है। मेहर गिया अथवा मेहर गियाह यह एक प्रकार की बूटी है। प्रसिद्धि है कि जो व्यक्ति इसको अपने पास रखे उस पर सब मेहरबान दो हो जाते हैं। एक कसायदे उर्फी नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 80। दो दयालु कृपालु पृष्ठ संख्या 691। ख्वाजा हाफिज इस कवि प्रशस्ति का उपयोग करते हुए लिखते हैं, सब्जा ए खते तू दीदेमो जे बुस्ताने बिहिश्त ब तलब गारी ए ई मेहर गियाह आमदा एम एक, अर्थात हमने तेरे खत दो का सब्जा तीन देखा और बिहिश्त चार के बाग से इस मेहर गियाह को प्राप्ति के लिए आए हैं। मोती एवं विष। फारसी साहित्य में कवि समय के अनुसार अब्रे बहार 5, बहार के बादल अथवा नैसान 6, मास के मेघ के जल बिंदु, सीप में मोती तथा सर्प में विष बन जाते हैं। उदाहरण क जे अब्र अफगंध कतराए सुए यम जे सुल्ब आवरद नुफाए दर्शिकम अजा कतरा लूलुए लाला कुनद वजी सूरते सर्व बाला कुनद 7, अर्थात खुदा बहार या नैसान के बादल से समुद्र की सीप में बिंदु गिराता है और उसे चमकदार मोती बना देता है। खुदा पीठ से गर्भ में वीर गिराता है और उससे सर्व जैसा कद रखने वाली सुंदर प्रकृति आकृति बना देता है। एक दीवाने हाफिज मदबा मजीदी कानपुर पृष्ठ 330। दो युवावस्था में गालों पर उगने वाले नए बाल। तीन हरियाली। चार स्वर्ग। 5 ईरान में प्रायः 21 मार्च से 21 जून तक बहार का मौसम होता है, जो अत्यधिक सुहावना होता है। इसमें पुष्प आदि पूरे यौवन पर होते हैं। 6 शामी मास, जो अंग्रेजी मास अप्रैल के मुताबिक होता है। इस मास में कुछ कुछ वर्षा हो जाया करती है। 7 शेख सादी बोस्तान लाहौर दीन मुहम्मदी प्रेस पृष्ठ 5 पृष्ठ संख्या 692। ख समस्त सृष्टि का कर्ता परम तत्व ही है, इस भाव को प्रकट करने के लिए कवि उर्फी उक्त कवि समय का प्रयोग करते हुए कहते हैं, जे अब्रो आफ्ताब अंदेशा अत कोतह बवद जारू दुर अज गंजीना ए दरिया ओ लौल अज जैबे का बीनी एक, अर्थात बादल और सूरज तक तेरे ख्याल की पहुंच नहीं है, जब ही तो तू यह समझता है कि कीमती मोती समुद्र के खजाने से और लाल पद्मराग कान के भीतर से पैदा होते हैं। ग हजरत यूसुफ जब 2 वर्ष के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया। वे प्रायः रोते रहते थे। यह देखकर उनके पिता हजरत याकूब ने उनके लालन पालन का कार्य अपनी बहन को सौंप दिया। मौलाना जामी इस भाव को उपरोक्त कवि प्रसिद्धि के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। पिदर चू दीद हाले गौहरे खेश सदफ करदश किनारे खाहरे खेश। 2 अर्थात पिता ने अपने मोती पुत्र का यह हाल देखा कि वह प्रायः नीर बहाता रहता है, तो उसने अपनी भगिनी की गोद को उसके लिए सीपी बना दिया। हिंदी साहित्य में भी कवि समय के अनुसार स्वाति बिंदु सीप में मोती और नाग के मुख में विष बन जाता है। उदाहरण तन सुना जो बरिश सेवाती एक एक बूंद अमीय कह जाती जैसे रंगरे हाय गुन सोई सांप के मुखरे परत बिख होई वह बूंद सीप गज मोती निर्मल होए अधिक तेहि ज्योति। 3 एक कसायदे उर्फी नवल किशोर प्रेस लखनऊ सन 1928 ईस्वी पृष्ठ 77। 2 यूसुफ जुलेखा नवल किशोर प्रेस सन 1896 ईस्वी पृष्ठ 44। 3 कुतबन कृत मृगावती संपादक डॉ. शिव गोपाल मिश्र प्रयाग शक 1885 पृष्ठ 184 पृष्ठ संख्या 693। जोगी ह बहुते छंद ओराही बूंद सेवाती ही जैस पराही परे समुद्र खार जल ओही परे सीप मुह मोती होही परे पुहमी पर होई कचुरु परे केदली मह होई कपूरु परे मेरु पर अमृत होई परे नाग मुख बिख होई सोई। 1 मयूर प्रसिद्धि है कि बहिष्ट स्वर्ग में हजरत आदम को वंचित रखने के लिए शैतान ने सर्प का रूप धारण किया। मयूर सांप को खा जाता है, इसलिए उसको घायल करके मयूर सर्प रूप शैतान को स्वर्ग में ले गया। दंड स्वरूप उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। इस ओर संकेत करते हुए ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने मंतिकुत्तैर में लिखा है, सुहबते आ यार दर खूनम फिगंद वज बहिष्टे अदन बेरुनुम फिगंद दो, अर्थात मयूर कहता है कि उस मित्र सर्प की निकटता का कुप्रभाव मुझ पर भी पड़ा, इसी कारण मुझे स्वर्ग से निर्वासित कर दिया गया। नमरूद और पश्चा तीन। नमरूद और पश्चा की जंग फारसी काव्य का एक विशेष विषय रहा है। एक बार नमरूद ने हजरत इब्राहिम से कहा कि मैं तेरे खुदा से लड़ना चाहता हूँ। हजरत इब्राहिम ने उत्तर दिया कि तू लड़ नहीं सकता। नमरूद ने अभिमान से अभिभूत होकर 3 दिन में लाखों की संख्या में सेना एकत्रित कर ली। एक पद्मावत संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1996 ईस्वी पृष्ठ 263। दो मंतिकुत्तैर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 50। तीन मशक मच्छर हजरत इब्राहिम के प्रार्थना करने पर अगणित मच्छर पृष्ठ संख्या 694 जमा हो गए। उन्होंने नमरूद के सैनिकों के शरीर का रक्त चूस लिया और उन्हें किसी काम का न छोड़ा। नमरूद भागकर नारियों में जा घुसा। एक लंगड़ा मच्छर नाक के द्वारा नमरूद के दिमाग में घुस गया। नमरूद 40 दिन अत्यधिक कष्ट सहने के अनंतर काल कवलित हो गया। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने इस संबंध में लिखा है, नीम पश्चा दर सरे नमरूद शुद्ध मगजे आ शर्गस्ता दिल पुरदूद शूद एक, अर्थात एक आधा लंगड़ा मच्छर नमरूद के सिर में घुस गया, उसका दिमाग फिर गया और दिल से धुआं उठा। मौलाना निजामी उक्त घटना की ओर संकेत करते हुए लिखते हैं, बने देश अजा पस्सा ए नेशदार की नमरूद रा गुफत सरपेशदार दो, अर्थात तनिक उस डंक रखने वाले मच्छर का ध्यान कर जिसने नमरूद से कहा था कि सिर को आगे कर। नूरुल मुहम्मदिया मुहम्मद का आलोक। सभी सूफियों का विश्वास है कि उस परम ज्योति से सर्वप्रथम नूरुल मुहम्मदिया की उत्पत्ति हुई और फिर उसी उपादान करण से इतर जगत की रचना हुई। फारसी और हिंदी के सभी सूफी कवियों को मोहम्मद साहिब की सत्ता नूर रूप में मान्य है। परम ज्योति से सर्वप्रथम उन्हीं की उत्पत्ति हुई और फिर उन्हीं की प्रसन्नता के हेतु सृष्टि रचना हुई। एक मंतिकुत्तैर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 112। दो सिकंदर नामा नवल किशोर प्रेस लखनऊ सन 1876 ईस्वी पृष्ठ 90 पृष्ठ संख्या 695। ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार कहते हैं, आचे अवल शुद पदीद अज नूरे गैब बूद नूरे पाके ऊ बे हैच रैब एक, अर्थात जो चीज की सर्वप्रथम परोक्ष परम ज्योति से उत्पन्न हुई वह निस्संदेह उन हजरत मोहम्मद का पावन एवं पवित्र प्रकाश था। नूरे उ मकसूदे मखलुकात बूद असले मादुमातो माजुदात बूद दो, अर्थात समस्त सृष्टि केवल उन्हीं के प्रकाश के कारण उत्पन्न की गई और वस्तुएं जो प्रत्यक्ष हैं या परोक्ष सबके मूल में वही सत्ता है। हिंदी सूफी कवि भी उक्त भावों को अभिव्यक्त करते हैं, यथा क पुरुख एक सिरजसी उजियारा नाओ मुहम्मद जगत पियारा जही लगी सबै पृथ्वी सिरी और तीह नाओ मौनदी फिरी तीन ख पहले नूर मोहम्मद कीनी पाछे तेही का जत सब चीनी और तेही लगी आई ही परगटी सिउ सकती की तिस दुई घटी चार ग कीन है सी प्रथम ज्योति परकासु कीन है सी तेही पिरित कैलासु पाँच घ कीन है सी पुरुष एक निर्मरा नाम मुहम्मद पूनव करा प्रथम ज्योति विधिताकर साजी और तेह प्रीति सिहिट उपराजी छे अंग मूल मुहम्मद सब जग साखा विधि नो लाख मटुक सिर राखा ओही पटतर दोसर कोई नाही वह शरीर यह सब परिछाही सात एक मंतिकुत्तैर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 17। दो मंतिकुत्तैर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 16। तीन मौलाना दाऊद दलमयी कृत चंदायन संपादक परमेश्वरी लाल गुप्त दिल्ली सन 1964 ईस्वी पृष्ठ 81। चार कुतुबन कृत मृगावती संपादक डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र प्रयाग शक 1885 पृष्ठ 1। पाँच जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 1। वही पृष्ठ 4-7 मंझनकृत मधुमालती संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 9 पृष्ठ संख्या 696 च वही ज्योति पुनि किरण पसारी किरण किरण सब सृष्टि संवारी ज्योति का नाम मोहम्मद राखा सुनत सरोष कहा अभलाखा। 1 यदि हजरत मोहम्मद के नूर का आविर्भाव न होता तो सृष्टि ही न होती, ऐसी भावना भी इन कवियों में उपलब्ध होती है। जैसे जो न करतु वह ओकर चाऊ होत न जग मह एक उपाऊ। 2 नोश दारू। 3 प्रसिद्धि है कि नोश दारू एक ऐसी दवाई है जो बड़े से बड़े घाव को भी अच्छा कर सकती है, मरता हुआ व्यक्ति भी इसके प्रभाव से बच जाता है। कहते हैं कि यह मोमियाई कैकाउस के पास थी। रुस्तम ने जब भूल से अपने पुत्र सोहराब को घायल कर दिया तो उसने सोहराब के लिए नोश दारू को कैकाउस 4 से मंगवाया था, परंतु कैकाउस ने देने से साफ इनकार कर दिया। रुस्तम ने कैकाउस की ओर निम्नलिखित संदेश भेजा था, गरत हेच याद अस्त किरदारे मन यके रंजा कुन दिल व तिमारे मन अजा नोश दारू की दर गंजे तुस्त कुजा खस्तगा रा कुनद तंदुरुस्त ब नजदीके मन बा यके जामे मैं सजद गर फिरस्ती हम अकनु जापे। 5 1 उस्मान चित्रावली काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी सन 1912 ईस्वी पृष्ठ 5। 2 उस्मान चित्रावली काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी सन 1912 ईस्वी पृष्ठ 5। 3 मोमियाई तिर्याख विषहर। 4 ईरान का बादशाह। 5 शाहनामा ए फिरदौसी नवल किशोर प्रेस कानपुर सन 1326 हिजरी पृष्ठ 208 पृष्ठ संख्या 697 अर्थात यदि तुझको मेरी सेवा याद है तो मेरे साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिए थोड़ा सा कष्ट उठा। उस नोश दारू मुमियाई में से जो कि तेरे पास खजाने में पड़ी है और जो घावों को ठीक कर देती है कुछ मिकदार मुझे भेज दे और उसके साथ ही पीछे शराब का एक प्याला भी भेज दे। नौशीरवान अथवा कसरा की न्यायप्रियता। ईरान का सुप्रसिद्ध न्यायप्रिय बादशाह जो 531 ईस्वी में सिंहासनासीन हुआ। 1 कुछ कोशकारों के अनुसार बागे दाद न्याय का बाग 2 अर्थात बगदाद नामक नगर को उसी ने बसाया था, वह वहीं पर न्याय किया करता था। 3 बुजर्ज मेहर। 4 उसी का मंत्री था। मेसोपोटामिया में नौशीरवान का बनवाया हुआ ईवाने कसरा कसरा या नौशीरवान का भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में विद्यमान है। इस भवन को ताके कसरा 5 अथवा कसरा का भवन भी कहते हैं। प्रसिद्धि है कि जब इस भवन का निर्माण होने लगा तो इसके एक कोने में एक वृद्धा की झोपड़ी थी। बादशाह ने चाहा कि इस झोपड़ी को मोल ले लिया जाए जिससे भवन टेढ़ा न बने। 1 सर साइक्स पी ए हिस्ट्री ऑफ पर्शिया भाग 1 लंदन सन 1951 ईस्वी पृष्ठ 449। 2 डॉक्टर स्टेनगास एफ पर्शियन इंग्लिश डिक्शनरी लंदन सन 1930 ईस्वी पृष्ठ 192। 3 स्टेनगास बगदाद की उत्पत्ति बगदाद से मानते हैं। बग एक देवता है अतः बगदाद का अर्थ हुआ बग देवता प्रदत्त। डॉक्टर स्टेनगास पर्शियन इंग्लिश डिक्शनरी लंदन सन 1930 ईस्वी पृष्ठ 192। 4 ईरान का सुप्रसिद्ध वजीर वह अद्वितीय विद्वान एवं कुशल प्रबंध करता था। 5 सर साइक्स पी ए हिस्ट्री ऑफ पर्शिया भाग 1 लंदन सन 1951 ईस्वी पृष्ठ 470 परंतु वृद्धा ने उनकी पृष्ठ संख्या 698 मांग को अस्वीकार कर दिया। इस पर पदाधिकारियों ने वृद्धा से बलपूर्वक भूमि को हथियाना चाहा, परंतु नौशीरवान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि मैं अन्याय से प्रजा की भूमि पर अधिकार नहीं करना चाहता, यदि मेरा भवन टेढ़ा भी बने तो कोई चिंता की बात नहीं। जब कवि नौशीरवान के न्याय का उल्लेख करते हैं तो उस वृद्धा का वर्णन भी करते हैं, यथा बस नामवर बजेरे जमी दफन करदा अंध कज हस्तीश बरवे जमी यक निशा नमांद वा पीरे लाशा रा की सिपुर दंद जरे खाक खाकश चुना बखुर्द कजु उत्सुखा नमांद जिंदस्त नामे फरुखे नौशीरवा ब अदल गर्चे बसे गुरस्त की नौशीरवा नमांद। 1 अर्थात बहुत से सिद्ध पुरुषों को भूमि में गाड़ दिया गया है, उनका नामो निशान नाम को भी नहीं रहा है। उस वृद्धा के शव को जिसे भूमि को सौंप दिया गया था, मिट्टी ने इस तरह से खाया कि हड्डी तक शेष न रही। नौशीरवान का नाम अमर है, यद्यपि उसको मरे हुए युग व्यतीत हो गए हैं। हिंदी सूफी कवि जायसी ने नौशीरवान के न्याय की ओर इस प्रकार संकेत किया है, नौशीरवान जो आदिल कहा साही अदल सरिसौ न आहा। दो हफत इकलीम अथवा किश्वर। फारसी साहित्य में इकलीम द्वीप सात माने जाते हैं। ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार लिखते हैं, बादशाह बूद आलम जाने उ हफत किश्वर जुमला दर फरमाने उ। तीन एक शेख सादी गुलिस्तान अध्याय प्रथम कथा द्वितीय। दो जैसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ छः। तीन मंतिकुत्तैर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 284 पृष्ठ संख्या 699। अर्थात एक बादशाह था जो समस्त संसार का स्वामी था, वह सातों द्वीपों पर राज्य करता था। भारतीय साहित्य में भी द्वीपों की संख्या सात मानी जाती है। हिंदी सूफी कवि जायसी ने इसी प्रसिद्धि को ध्यान में रख कर लिखा है कि इन्हें सी सात द्वीप ब्रह्मंडा, कि इन्हें सी भुवन 14 खंडा। एक कवि मंजन कहते हैं, नौ खंड सात द्वीप सब ठाउ, भयो भरम अतिकित गा नाउ। दो हफत व नूह 16 श्रृंगार। कवि समय के अनुसार श्रृंगारों की संख्या 16 है। ये इस प्रकार हैं, हिना 3, वस्मा 4, सुरमा 5, सुर्खी 6, सफोदाब 7, जरक 8, गालियां 9, हफत अर्थात 7, सराविजा 10, गोशवारा 11, सिलसिला 12, हलक ए बीनी 13, गुलूबंद 14, बाजूबंद 15, दस्त बरन जन 16, अंगुष्टर 17 और खलखाल 18। नूह अर्थात 9। एक पद्मावत संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1963 ईस्वी पृष्ठ 1। दो मंजन कृत मधुमालती संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 10। तीन मेहंदी 4, नील 5, अंजन 6, लाल रंग का पदार्थ 7, श्वेत वर्ण का जल जिसे शरीर में निखार आ जाता है 8, सोने का वर्क 9, एक अत्यधिक सुगंधित पदार्थ 10, सिर का एक आभरण 11, कान का एक आभूषण 12, जंजीरा 13, नाक का एक गहना 14, गले का एक अलंकार 15, बाजू का एक भूषण 16, हाथ का एक जेवर 17, अंगूठी 18, घुटने का एक आभरण। पृष्ठ संख्या 700। अतः 7 × 9 = 16 श्रृंगार। एक अमीर खुसरो मतला उन्वार में लिखते हैं, हफत नूह खेश बयारा स्तंद। दो अर्थात उन्होंने अपने आप को 9 तथा 7 16 श्रृंगारों से सुसज्जित किया। हिंदी सूफी कवि मंजन 9-7 का प्रयोग इस प्रकार करते हैं, सूर न सरभरी पावे, चांद न खूंदे छाह, 9 सतकला सपूनी सोवे, जोवन उसी से बाह। तीन तथा 9 सत सजे बाला, निभरन सेज सुख सोव, दुई चकु कुमार चकोर जेऊ, चंद्र बदनी मुख जोव। 4 हुमा। प्रसिद्धि है कि हुमा सदैव वायु में उड़ता रहता है और भूमि का स्पर्श नहीं करता। यदि इसकी छाया किसी व्यक्ति के सिर पर पड़ जाए तो वह बादशाह बन जाता है। यह भी प्रसिद्धि है कि हुमा किसी को नहीं सताता, केवल अस्थियां खाकर ही अपना जीवन निर्वाह करता है। एक सरस्टेन गास पी पर्शियन इंग्लिश डिक्शनरी लंदन सन 1930 ईस्वी पृष्ठ 1504। दो अमीर खुसरो मतला उन नवार नवल किशोर प्रेस लखनऊ सन 1934 ईस्वी पृष्ठ 11। तीन मंजन कृत मधुमालती संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इलाहाबाद सन 1961 ईस्वी पृष्ठ 60। चार वही पृष्ठ 155। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार कृत मंतिक उत्तैर में हुमा ने अपने संबंध में इस प्रकार कहा है, पृष्ठ संख्या 701। गुफत ए परिंद गाने बहरो बर, मन नयम मुर्गे चु मुर्गाने दिगर, हिम्मते आलिम दरकार आमदस्त, उजलत अस खलकम पदीदार आमदस्त, नफसे सगरा खार दारम लाजरम, इज्जत अज मन याफत अफरीदू ओजम, पादशाह साया पवरदे मन अंध, हर गदा तबा कुजा मर्दे मन अंध, नफसरा चू उस्तुखा दादम मुदाम, जाने मन जी याफत आ अली मकाम। एक, अर्थात हे नभचरो तथा जलचरो, मैं अन्य पक्षियों की भांति नहीं हूँ, मुझमें उच्चोत्साह है, इसी कारण मैं सबसे पृथक रहता हूँ। मैं अपने कुत्ते जैसे नफस को निराहत रखता हूँ। मैंने अफराहीन अफरीदून एवं जमशेद जैसे बादशाहों को सम्मानित किया है। सब बादशाहों ने राज्य मेरी छाया के कारण ही प्राप्त किए हैं। सब फकीर मेरे सेवक हैं। मैं अपने नफस को जो कुत्ते के समान अपमानित है अस्थियां खिलाता हूँ, इसलिए मेरी आत्मा का स्थान उत्तुंग है। ज्योतिष एवं भारतीय साहित्य के अनुसार सर्प के सिर या कमल पर बैठे खंजन को देखने से राज्य मिलता है। कवि जायसी लिखते हैं, पन्नग पंकज मुख गहे, खंजन तहां बैठ, छत्र सिंहासन राजधन, ताकह होई जो डीठ। दो, यदे बैजा। तीन, हजरत मूसा श्रेष्ठ पैगंबर थे। चार, एक, मंतिक उत्तैर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 56। दो, जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 47। तीन, सफेद हाथ, यद बराबर हाथ, बैजा बराबर सफेद। चार, इब्रानी भाषा में मुंह का अर्थ है ताबूत और सा का पानी, क्योंकि उस समय फिरौन की आज्ञा से बनी इसराइल के बालकों का वध किया जा रहा था, इसलिए उनकी माता ने उन्हें एक टोकरी में डालकर नील नदी में बहा दिया। उनके पिता का नाम इमरान था। वे यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के पैगंबर थे। मुसलमानों के लिए जो स्थान मोहम्मद का है, यहूदियों के लिए वही मूसा का। तौरात उन्हीं पर नाजिल हुई थी। उनके समय में वलीद बिन मुसब पृष्ठ संख्या 702 फिरौन एक मिस्र पर शासन करता था। वह अत्यंत अभिमानी और अत्याचारी था। वह नास्तिक था और खुदाई का दावा करता था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि उसको मारने वाला बने इसराइल नामक जाति में पैदा होगा। बने इसराइल की अवस्था उस समय अत्यंत निकृष्ट थी। वे मिस्र में गुलामी और मजदूरी करते थे। फिरौन ने भविष्यवाणी को सुन बने इसराइल के बच्चों की हत्या करने का आदेश दिया। हजरत मूसा जब उत्पन्न हुए तो उनकी माता ने उन्हें एक टोकरी में डालकर नील नदी में बहा दिया। टोकरी बहते बहते फिरौन के भवन 2 तक जा पहुंची। फिरौन की पत्नी ने उसको नदी से निकलवा लिया। बच्चे के रूप रंग को देखकर दया आई, उसने उसके लालन पालन की आज्ञा दे दी। एक, मिस्र का बादशाह जो हजरत मूसा का समकालीन था। वस्तुतः फिरौन मिस्र के बादशाहों का आम लकब था। वे खुदाई का दावा करते थे और पूजे जाते थे। श्री स्टेनगास के अनुसार हजरत मूसा के समकालीन फिरौन का नाम वलीद बिन मुसब था। पर्शियन इंग्लिश डिक्शनरी लंदन सन 1960 ईस्वी पृष्ठ 920। सैयद आबिद अली आबिद ने उसका नाम रामीस सानी लिखा है। उनके शब्दों में उसका नाम रामीस सानी द्वितीय था। इस कलिमा में रा एक देवता का नाम है और आखिर में आइस एक देवी का। रा सूरज देवता को भी कहते हैं। तलमिहाते इकबाल हिस्सा है उर्दू लाहौर सन 1959 ईस्वी पृष्ठ 236। दो, भवन नील नदी के तट पर था। पृष्ठ संख्या 703। कालोपरांत फिरौन को उस बच्चे पर अपना वधक होने का संदेह हुआ। चाहा कि उसका काम तमाम कर दे, परंतु फिरौन की पत्नी ने उसे ऐसा करने से वर्जित किया। फिरौन ने उस बच्चे की परीक्षा अद्भुत रीति से ली। एक तश्त परात लो पद्मराग मणियों से और एक तश्त अंगारों से भरकर उसके सामने रखवा दी। फिरौन का विचार था कि यदि बच्चा वही है जो उसका वधक होगा तो अंगारों पर हाथ नहीं डालेगा। जब बच्चे ने हाथ लपकाया तो लहलो पर पड़ने ही वाला था, परंतु फरिश्ते ने उसका हाथ खींचकर अंगारों की परात पर रख दिया। बच्चे ने एक अंगारा उठाया और झप से मुंह में रख लिया। हाथ की हथेली और जबान एक दोनों जल गईं। कालोपरांत खुदा ने तूर पर्वत पर हाथ के सफेद दाग में चमत्कार उत्पन्न कर दिया। फलतः जब वे अपना दायां हाथ बगल में ले जाकर निकालते थे तो वह चमकने लगता था। उसकी चमक लोगों को चुंधिया देती थी। ख्वाजा हाफिज के निम्न पद में यदे बैजा का प्रयोग देखिए। सिहर बा मोजिजा पहलू नजनद दिलखुश दार सामिरी किस्त की दस्त अज यदे बैजा ब बुरद। दो अर्थात जादू चमत्कार के समक्ष नहीं ठहर सकता। सामरी तीन कौन है जो यदे बैजा को पराजित कर सके। एक इसी कारण हजरत मूसा की जबान में हकलापन आ गया जो समस्त जीवन शेष रहा। दो दीवाने हाफिज मदबाई मजीदी कानपुर पृष्ठ 204। तीन एक प्रसिद्ध जादूगर जो बहुमत के अनुसार सामिर नामक नगर का निवासी था, उसने हजरत मूसा को पैगंबर मानने से इनकार कर दिया था। उसने जादू के बल पर सोने का एक बछड़ा बनाया जो बोलता था। उस बछड़े को खुदा समझकर बहुत से लोग उसे पूजने लगे और पथभ्रष्ट हो गए। ऐसा देखकर हजरत मूसा ने अपना यदे बैजा बछड़े के सामने कर दिया। बछड़ा जलकर राख हो गया और सामिरी का खेल बिगड़ गया।